स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 23 अप्रैल और दिन शनिवार। उत्तराखंड में राजनीतिक उथल पुथल जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 27 अप्रैल तक बरकरार रहेगा राष्ट्रपति शासन।
हमने तो जो है जुर्म भी सहे हैं, हमने न्याय भी ग्रहण किया है, तो हम जो है जो न्याय दे उसका भी भला, जो जुल्म कर रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं।
नीतीश कुमार आज से संभालेंगे जनता दल यू के अध्यक्ष का कार्यभार। सुखा भारत की पांचवी कड़ी में मुलाकात भैयाराम यादव से।
कसम खाया था मैंने वृक्ष सेने के लिए और मेरे पिताजी के साथ पौधा है, तो कम से कम मुझे 14 तो सेना चाहिए।
लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अजय शर्मा से। कांग्रेस और भाजपा की खींचतान में फंसे उत्तराखंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने फिर राष्ट्रपति शासन बहाल करने को कहा है। अब 27 अप्रैल को सुनवाई के बाद ही उत्तराखंड में नई सरकार की तस्वीर साफ होगी। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरीश रावत ने फिर मुख्यमंत्री पद संभालकर कई फैसले किए थे, पर 24 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला स्टे कर दिया। राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लगने पर भाजपा ने खुशी जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अगर ब्रिटेन जून में होने वाले जनमत संग्रह के दौरान यूरोपियन यूनियन छोड़ने का फैसला करता है तो वो समृद्धि और ताकत दोनों खो देगा। लंदन में ओबामा ने कहा कि ईयू से बाहर निकलने के बाद असल में ब्रिटेन अमेरिका के साथ कारोबारी समझौतों के मामले में पिछड़ जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि ईयू की सदस्यता ने दुनिया में ब्रितानी असर को कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया है। अमरीका ईरान से परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाला 32 टन हैवी वाटर खरीद रहा है। अमरीकी विदेश विभाग के मुताबिक $86 लाख की इस खरीद का मकसद ईरान की मदद करना है, जो पिछले साल परमाणु करार के बाद से पाबंदियों से जूझ रहा है। विदेश विभाग की प्रवक्ता एलिजाबेथ ट्रूडियो ने कहा कि इस पानी का इस्तेमाल उद्योगों और शोध कार्यों में होगा।
The U.S. government via the Department of Energy is making a license purchase of 32 metric tons.
अमेरिकी सरकार ऊर्जा मंत्रालय के जरिए इस 32 मीट्रिक टन हैवी वाटर की लाइसेंसी खरीद कर रही है। इसे ईरान के परमाणु ऊर्जा मंत्रालय की कंपनी से लिया जा रहा है। इस हैवी वाटर से अमेरिका की इस साल उद्योगों और घरेलू शोध कार्यों की मांग की भरपाई की जा सकेगी। ये हैवी वाटर रेडियो एक्टिव नहीं है और इससे सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ये थी अमरीकी विदेश विभाग की प्रवक्ता एलिजाबेथ ट्रूडियो। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सीरियाई वायुसेना के एक पायलट को पकड़ने का दावा किया है, मगर इसका कोई सबूत नहीं दिया है। चरमपंथियों ने दमिश्क में सीरिया का विमान गिरा दिया था। आईएस से जुड़ी समाचार एजेंसी आमाक ने पायलट की पहचान हामा के आजम ईद के बतौर दी है और कहा है कि पायलट पैराशूट से कूदा था। एजेंसी ने विमान के मलबे का वीडियो भी जारी किया है। उधर सीरिया के अलेप्पो शहर में बमबारी पर अमेरिका ने चिंता जताई है। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि वो संघर्ष विराम बनाए रखने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी सेना ने माना है कि पिछले सितंबर के बाद 5 महीनों में इराक और सीरिया में उसकी बमबारी में 20 नागरिक मारे गए हैं। सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें नागरिकों के मारे जाने का अफसोस है, मगर ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया है। बिहार के औरंगाबाद जिले में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई है, इनमें 5 बच्चे शामिल हैं। हादसा दाऊदनगर के तरार गांव में हुआ। ये लोग अपने रिश्तेदार के पास एक कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। आग आसपास मौजूद 3 घरों में लगी। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अप्रैल की 23 तारीख और दिन शनिवार और इस वक्त हो चुके हैं 6:33:42। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड से। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने और फिर उसे वापस बहाल रखने के अदालती फैसलों के बीच राज्य एक तरह से राजनैतिक और संवैधानिक संकटों में घिरा हुआ है। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट तमाम दस्तावेजों के साथ सुनवाई करेगा और उसके बाद तय होगा कि उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण होगा या राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा या सरकार बहाल होगी। ये मामला कानूनी पेचीदगियों में इतना उलझ गया है कि कोई ठीक से कहने की स्थिति में भी नहीं है कि कल क्या होगा। ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की खींचतान ने एक राज्य को ही दांव पर लगा दिया है। पूरी रिपोर्ट के साथ देहरादून से शिव जोशी।
उत्तराखंड में मामला अब सिर्फ राजनीतिक रसाकशी का ही नहीं रह गया है, बल्कि ये अदालती और कानूनी दांवपेच में भी उलझता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 26 अप्रैल तक हाईकोर्ट को अपने आदेश के प्रति सभी पक्षों को उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद 27 को सुनवाई होगी, फिर तय होगा कि 29 अप्रैल को फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, या इसकी तारीख आगे खिसका दी जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी में इस बीच खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि जैसा हाईकोर्ट में हुआ वही सुप्रीम कोर्ट में होगा, क्योंकि केंद्र सरकार और बीजेपी की दलीलें कमजोर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश,
तो ये फैसला सभी सब दृष्टि से जिस जिस मुद्दे पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े वकील, यहाँ तक कि सालवे जैसे बड़े वकील को भी उन्होंने बुलाया, वो कोर्ट को नहीं।
उधर बीजेपी हाईकोर्ट के फैसले से नाराज ही है। उसका आरोप है कि हरीश रावत ने कोर्ट के फैसले की हस्ताक्षरित प्रति का भी इंतजार नहीं किया और फिर से कुर्सी कब्जा ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत,
माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था और उस निर्णय के आधार पर वो निर्णय भी हस्ताक्षर भी नहीं हुआ था, उसमें हस्ताक्षर नहीं हुए थे, निर्णय जारी भी नहीं हुआ था, केवल सुनाया गया था और उसका ही आधार लेकर के माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए और वो यह कहते हुए कि न खाता न बही, हरता जो कहे वो सही।
इस बीच कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े पीडीएफ यानी जनतांत्रिक मोर्चा के नेता मंत्री प्रसाद नेथानी का दावा है कि सरकार अपना काम बिना देर किए शुरू करना चाहती थी, क्योंकि विकास के कई काम अटके हुए हैं, लेकिन केंद्र इसे नाक की लड़ाई बना रहा है।
केंद्र सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट गई है तो ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड में स्थिरता रहे, विकास की गति आगे बढ़े, और अगर अपनी बात को मनाने के लिए इस तरीके के हथकंडे केंद्र सरकार अपना रही है तो इसका जवाब जनता निश्चित देगी। हमने अपना काम शुरू करना कर दिया था जैसे माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था।
कांग्रेस बीजेपी की खींचतान, कांग्रेस की आपसी कलह, उत्तराखंड की राजनीतिक दुर्दशा के बीच राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े लोग बेहद निराश और आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता की लड़ाई ने इस राज्य को बहुत पीछे धकेल दिया है। वरिष्ठ पत्रकार और आंदोलनकारी जय सिंह रावत,
इस समय ये नया राज्य है, ये अपने शैशव काल में है और इस समय उत्तराखंड के भविष्य के बारे में सोची जानी चाहिए, भविष्य की प्लानिंग होनी चाहिए थी, अगले 100 साल 50 साल की होनी चाहिए थी, लेकिन जिन लोगों ने इसके भविष्य की रूपरेखा तैयार करनी, जिन्होंने इसकी भविष्य की जन्मपत्री तय करनी, उनका अपना भविष्य का पता नहीं होता। पिछले 15-16 साल में 8 मुख्यमंत्री चले गए, अब 9वें मुख्यमंत्री की तलाश हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस जो ये म्यूजिकल चेयर का जो खेल खेल रहे हैं, यही खेला जाता रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री पद पर बहाल होकर लौटे हरीश रावत ने दर्जन भर से ज्यादा आदेश पारित कर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे का आदेश आने के बाद सारी फाइलें जहां की तहां धरी की धरी रह गई हैं। उत्तराखंड नए वित्तीय वर्ष में एक विराट संवैधानिक असमंजस, राजनीतिक टकराव और दुर्भाग्यपूर्ण हालात के साथ दाखिल हुआ है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरीश रावत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी दोबारा संभाल ली थी और कई फैसले भी किए थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन बहाल हो गया। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने हरीश रावत से बात की और उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिरोधार्य और हाईकोर्ट ने दिया, उनका धन्यवाद भी, उनका आदेश भी सिरोधार्य। हमने तो जो है जुर्म भी सहे हैं, हमने न्याय भी ग्रहण किया है, तो हम जो है जो न्याय दे उसका भी भला, जो जुल्म कर रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं।
जुल्म से आपका इशारा किस तरफ है, आप क्या कहना चाह रहे हैं?
केंद्र की तरफ है। केंद्र यदि मुझ पर जुल्म कर रहा होता कोई बात नहीं, लेकिन वो समाज पर कर रहा है, पूरे उत्तराखंड पर जुल्म कर रहा है। एक अस्थिरता उन्होंने यहाँ थोप दी है और उस अस्थिरता का दुष्प्रभाव उत्तराखंड के विकास पर पड़ रहा है। जो हाईकोर्ट का मुकदमा जो भाजपा कह रही है, मुझसे तो कह रहे हैं हाथ में कोर्ट का आदेश नहीं आया, आपने काम कैसे शुरू कर दिया। मैं भाजपा के दोस्तों से जरा पूछना चाहता हूं कि वो या केंद्र सरकार जब आदेश आया ही नहीं है हाथ में तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैसे चलेंगे? वो करे तो जायज है और हम कुछ कहें तो वो नाजायज है। देखिए हाईकोर्ट ने ओपन कोर्ट में जजमेंट प्रोनाउंस किया है। जब ओपन कोर्ट में जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है तो वो इमीडिएटली इफेक्टिव होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रेजिडेंट रूल है वो समाप्त और जो स्टेटस को एंटी रेस्टोर किया जाता है। यदि हम नहीं करते तो एक वॉइड क्रिएट होता, राज्य बिना सरकार के रहता, क्योंकि केंद्र की सत्ता रहती नहीं और राज्य की सत्ता टेक ओवर नहीं करती। तो आफ्टर ऑल हमने तो उसी आदेश का जो उसी का पालन किया है।
ये थे हरीश रावत। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भगत सिंह कोश्यारी से बात की वात्सल राय ने और पूछा कि क्या ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की वजह है।
नहीं, हम तो फ्लोर टेस्ट के लिए पहले दिन से तैयार हैं। तो बीच में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के लोगों ने हाईकोर्ट में कहा, उनके वकील ने कि साहब जब तक जो है को आपका फैसला ना आ जाए तब तक राष्ट्रीय शासन लागू और राष्ट्रीय शासन को खत्म न करें। ये खुद इनके वकील ने कहा, और तब तक आप जो किसी सरकार बना सकते हैं इसलिए आप जो है आपके निर्णय आने तक ये सरकार मत बनाए, ये तो खुद इनके वकील ने कहा, ये तो वैसे डरे हुए हैं।
लेकिन कोश्यारी साहब, जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो तो राज्यपाल ने जो फ्लोर टेस्ट के लिए तारीख तय की थी उसके एक दिन पहले ही लगाया गया था, तो उस समय अगर आप फ्लोर टेस्ट चाहते तो हो सकता था।
संवैधानिक जो अनिवार्यता है कि जिस सरकार गिर जाती है वित्त विधेयक पर उसी दिन वो सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, ये काम नहीं हुआ। उसी दिन राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसलिए गवर्नर साहब के आदेश के बाद हम माननीय राष्ट्रपति जी से मिले, और राष्ट्रपति जी क्योंकि मैंने कहा अनुभवी व्यक्ति है और वो कोई बीजेपी के भी नहीं है, तो उन्होंने संविधान की रक्षा करते हुए और पार्लियामेंट और विधानसभा की जो परंपराएं हैं उनका उन्होंने पालन करते हुए उन्होंने देखा कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, सरकार भंग होनी चाहिए, वही उन्होंने किया।
मेरा एक सीधा सवाल आपसे ये है कि अब आप क्या उत्तराखंड में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
नहीं, देखिए क्योंकि सारे विधायक चाहते हैं कि तुरंत चुनाव न हो, हम तो दोनों के लिए तैयार है, सरकार बनाने के लिए भी चुनाव के लिए भी। लेकिन अधिकांश विधायकों को लगता है कि अभी समय है, ये सरकार बननी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा कि सरकार बनाएंगे।
ये थे भगत सिंह कोश्यारी। वहीं कांग्रेस के बागी विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। बागी विधायकों के नेता कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा,
देखिए जो हरीश रावत की सरकार हारी फ्लोर टेस्ट में हारी है, क्रिकेट के मैदान में या गवर्नर हाउस में नहीं हारी है, विधानसभा के पट पे हारी है। इसलिए कितने फ्लोर टेस्ट आप मांगोगे संविधान में? आप आउट हो गए, आपको आउट दे दिया गया, आप कहते नहीं हमको एक इनिंग और खेलने दिया जाए।
बगुड़ा साहब, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो अब तक थे वो अपना बहुमत साबित करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाने की संभावनाओं पर भी गौर कर रही है। आपको आपको क्या लगता है, आपको अगली संभावना क्या लगती है उत्तराखंड?
देखिए, हरीश रावत जी को दोबारा बहुमत साबित करने का अवसर नहीं देना चाहिए। अगर आप विधानसभा में हार रहे हैं, आपका फाइनेंस बिल हारा है, तो उसके बाद आपको कोई हक संविधान नहीं देता, या संसद, आप कोई संसदीय प्रणाली देख लो, आप अस्किन मेन और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस देख लो, कोई किताब देख लो, जहाँ फ्लोर पे हारने के बाद सरकार कहे कि हमको एक मौका और दो। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि वो कहते हैं हम सरकार बनाना चाहते हैं, तो ये तो सेटिस्फेक्शन राज्यपाल का होता है जब राष्ट्रपति शासन हटेगा या वो हटाएंगे कि किस सरकार के पास बहुमत है जो सरकार बना सकती है, और उस सरकार को राज्यपाल मौका देंगे। वो अवसर अभी मेरी नजर में नहीं आया है।
ये थे विजय बहुगुणा, और इसी से जुड़ा है आज का बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल।
जनता की चुनी सरकारें गिराने के लिए धारा 356 का इस्तेमाल क्यों हो? अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई और फिर केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस फैसले को गलत बताया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में। क्या ऐसे विवाद संघीय ढांचे को कमजोर करते हैं? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 23 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार, हिमाल मीडिया के सह प्रकाशक और जाने माने लोकतंत्र समर्थक और मानवाधिकार कार्यकर्ता कनक मणि दीक्षित को कल नेपाल की एक संस्था CIAA कमीशन टू इन्वेस्टिगेट एब्यूज ऑफ अथॉरिटी ने गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में और जानकारी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की नेपाली सेवा के अपने साथी गनी अंसारी से।
नेपाल के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है, उसने कल गिरफ्तार किया है और उसके जो वारंट पेपर है उसमें लिखा गया है कि आपके जो जायदाद है उसका जरिया स्पष्ट नहीं है कि कहाँ से आपने इतने सारे जायदाद हासिल किए हैं, तो जरूरी दिखता है कि इसमें अनुसंधान किया जाए, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। कि लोकल मीडिया के अनुसार तकरीबन 2 दर्जन पुलिस थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। काठमांडू के करीब के जिला ललितपुर, वहाँ पे उनका निवास है, पाटन जगह है, पाटन से उनको गिरफ्तार किया गया है। जहाँ तक उनकी बेल की बात है, आज यहाँ पब्लिक हॉलीडे है, सो वो आज निकल भी नहीं पाएंगे।
क्या वाकई ये मामला है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है उनकी, या कोई और राजनीतिक मामला है उनकी गिरफ्तारी के पीछे?
उनको कोट किया गया है यहाँ के लोकल मीडिया में कि मुझे बस फंसाया जा रहा है, मेरे चरित्र पे दाग लगाया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। और अब तक ये भी किसी को मालूम नहीं कि उनके जायदाद कितने हैं, कहाँ से इनकम है, ये कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो वरिष्ठ पत्रकार होने के बावजूद साझा यातायात सहकारी लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं, गाड़ियाँ भी चलती है यहाँ काठमांडू में, कोई नहीं कर सकता, इलीगल ही है उनके जायदाद।
काठमांडू सीए थे गनी अंसारी। और अब बात उन खबरों की जिन पर रहेगी आज सबकी नजर।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज मणिपुर के एक दिन के दौरे पर जा रहे हैं। वहां वो खोंगजोम दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और एक टूरिस्ट सेंटर का उद्घाटन करेंगे। सरकार 23 अप्रैल को उन सैनिकों की याद में ये दिवस मनाती है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए जान दी थी। खोंगजोम में 1891 में हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध की इस साल 125वीं बरसी है। आम आदमी पार्टी आज से पंजाब में पंजाब डायलॉग या बोलदा पंजाब अभियान शुरू कर रही है। इस दौरान राज्य में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अलग अलग मुद्दों पर नीति तय की जाएगी और चुनाव मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के सिलसिले में डीएम के चीफ एम करुणानिधि आज से चेन्नई में अपना प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं। इस दौरान वो राज्य भर में 35 जगह भाषण देंगे। यूरोपियन यूनियन के वरिष्ठ अधिकारी और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल आज तुर्की की यात्रा पर जा रही हैं। यह यात्रा शरणार्थियों को लेकर तुर्की के साथ हुए समझौते के सिलसिले में हो रही है। मर्केल, ईयू अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क और उपाध्यक्ष फ्रांस टिमरमेंस गाजियान्टेप जाएंगे, जहां सीरिया के गृहयुद्ध से भागकर पहुंचे शरणार्थी रह रहे हैं। अफगानिस्तान के शरणार्थी मामलों के मंत्री सैयद हुसैन अलेमी बल्खी पाकिस्तान यात्रा पर हैं। अपने दौरे के आखिरी दिन आज वो पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान अपने शरणार्थियों को पाकिस्तान से वापस उनके देश भेजने के लिए सहयोग मांग रहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा समेत कई शहरों में आज से भारत 14 दिन का इंडिया बाय द नाइल नामक सांस्कृतिक समारोह शुरू कर रहा है। इसमें भारतीय संस्कृति, कला, संगीत और फिल्मों को दिखाया जाएगा। भारत के इतिहास, संस्कृति और कला को लेकर आज एक इंटरैक्टिव इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च हो रहा है। TCS के समर्थन से बने इस विश्वकोश को 10 भागों में बांटा गया है।
और अब चलते हैं बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नव निर्वाचित अध्यक्ष नीतीश कुमार आज औपचारिक रूप से पार्टी की कमान संभालेंगे। बिहार की राजधानी पटना में आज पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। नीतीश की ताजपोशी को जनता दल यूनाइटेड में नए युग की तरह देखा जा रहा है। सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
जनता दल यूनाइटेड का चेहरा माने जाने वाले नीतीश कुमार अब इस पार्टी के मुखिया भी हैं। 10 अप्रैल को उन्हें जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था। आज पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्हें औपचारिक रूप से यह जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। नीतीश ने शरद यादव के इस्तीफा देने के बाद पार्टी की कमान संभाली है। अध्यक्ष के रूप में नीतीश की प्राथमिकताओं के बारे में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं,
वह शख्सियत जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विधानसभा चुनाव था वह सामने में खड़े थे और उनको पराजय का सामना करना पड़ा। तो एक ऐसा चेहरा जो देश के प्रधानमंत्री के समतुल्य और समानांतर जिनकी लोकप्रियता है, ये निश्चित रूप से बिहारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और देश की राजनीति का एक ऐसा घटनाक्रम। गैर संघवाद का जो नारा माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया है, उस नारे पर अमली जामा पहनाएंगे।
नीतीश ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद गैर संघवाद का आह्वान किया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के बरअक्स संघ मुक्त भारत की तरह पेश किया जा रहा है। हालांकि उधर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि नीतीश राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। भाजपा के बिहार इकाई के प्रवक्ता संजय मयूख ने नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर चुटकी ली है।
ये किस आधार पे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसके पहले तो इनको यह बताना चाहिए कि इनकी ताक कहाँ कहाँ है। बिहार से अलग होकर इस पार्टी का कहीं कोई जनाधार नहीं है, इससे एनडीए को कोई चुनौती नहीं मिलने वाली है। यह चुनौती माननीय लालू प्रसाद जी को है, यह चुनौती माननीय शरद यादव जी को है, यह चुनौती बीजेपी के लिए नहीं है।
नीतीश कुमार कभी एक व्यक्ति एक पद के हिमायती हुआ करते थे, लेकिन बदले राजनीतिक हालात में अब वे भी दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। जानकारों का मानना है कि जदयू को मजबूत करने से बड़ी चुनौती नीतीश के सामने यह है कि वे कितना मजबूत भाजपा विरोधी अखिल भारतीय मोर्चा बना पाते हैं। मनीष शांडिल, बीबीसी पटना।
और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और अजय शर्मा अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी बताया जाए
जी, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की खबर तकरीबन सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जनसत्ता मेरे सामने है, जनसत्ता में ये रावत, हरीश रावत जो अब जो है निवर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, उनका एक इंटरव्यू भी छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टे से पहले से पिछले दरवाजे से राज्य पर एक अनैतिक सरकार थोपने की कोशिश की गई है। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दोबारा से राष्ट्रपति शासन जी उसके सिलसिले में कहा है। दूसरी खबर जो है इसी अखबार की पहले पन्ने पर है कि किसानों की ज़मीन पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जो बलिया में होने वाला था उसको लेकर किसानों का विरोध शुरू हो गया है, और ये एक मालदेपुर नाम से एक जो है गांव है जहां पर ये कार्यक्रम होना था, और ये बलिया लखनऊ राजमार्ग पर पड़ता है जहां पर किसानों ने बिना इजाज़त ज़मीन को लेने का विरोध किया है। दूसरी एक जागरण की एक पहले पन्ने पर जो खबर दिख रही है वो ये है कि दिल्ली में जल्द ही जो है ऐप आधारित प्रीमियम बसें जो हैं चलाई जाएंगी, और ये इसका इसमें परिवहन मंत्री गोपाल राय के हवाले से कहा गया है कि ये जो है उन लोगों के लिए है जो लोग कार छोड़ नहीं पाते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि कोई उस तरह की उच्च स्तरीय सुविधा मिले, तो इस सारी बुकिंग जो है इसमें ऑनलाइन होगी। इसके अलावा सिद्धू और स्वामी समेत 6 लोगों की राज्यसभा में मनोनयन की जो खबर है वो भी पहले पन्ने पर है। एक खबर मुझे नवभारत टाइम्स में दिख रही है वो है कि वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के नेता डोलकुन ईसा को भारतीय वीजा देने की रिपोर्टों को विदेश मंत्रालय ने पुष्टि या खंडन नहीं किया है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि भारत सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। दरअसल इनको चीन जो है आतंकी का दर्जा देता है। नई दुनिया ने अपने पहले पन्ने को उज्जैन में जो कुंभ मेला चल रहा है उससे पूरी बड़ी सी तस्वीर के साथ उसको प्रकाशित किया है और उसके अलग अलग पहलुओं का जिक्र किया है।
बहुत शुक्रिया आपका अजय अखबारों की समीक्षा का।
एक तरफ आईपीएल मैचों के लिए पानी से तरबतर मैदान, दूसरी तरफ पानी के लिए तरसते गांव देहात।
कहाँ आवत है पानी, मरती है गोरु बचेरु मराई सबको भैया हरा कहे का।
सूखी जमीन, पथराई आंखों में बच्चों के बिखरते सपने।
हमारे सबसे बच्चे जाते होंगे स्कूल बहुत कम जाते हैं और ज्यादा पानी में, और अब घर के काम दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें माफ चलेगा दिल्ली, क्योंकि यहाँ कुछ खाने के लिए है नहीं, सरकार कुछ कर नहीं रही है। मतलब
पानी नहीं बचा, बचे रहे तजुर्बे।
पहले जो है तो लोग पानी का रख रखाव करते थे, बंधिया डालते थे, अब आज बरसाती पानी कोई रोक नहीं पा रहा,
और अब चारों तरफ सूखा ही सूखा।
आसों की साल में कई आदमी ने बलकट के लाने खेती लई, अब भाव ना कुछ तो सवेरे से चिल्लाता कही कि हम तो आत्महत्या कर ले।
सूखा भारत, शाम 7:30 बजे दिन भर में, पुनः प्रसारण अगली सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। सूखा भारत,
पूरा बुंदेलखंड इस समय सूखे की चपेट में है। पानी के लिए त्राही मची हुई है, जगह जगह क्रेशर प्लांट्स की धूल उड़ती दिख रही है और पेड़ और पहाड़ जमकर काटे जा रहे हैं। उसी बुंदेलखंड में भैया राम यादव नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्हीं पेड़ों को बचाने और नए पेड़ों को लगाने की कसम खा रखी है और पूरा जीवन पेड़ों को ही समर्पित कर दिया है। बुंदेलखंड यात्रा के दौरान बीबीसी संवाददाता समीर आत्मन मिश्र ने भैया राम से मुलाकात की, सुनिए उन्हीं से सूखा भारत की 5वीं कड़ी।
चित्रकूट जिले के भरतकूप इलाके का ये पहाड़ी जंगल है, यहाँ आसपास सिर्फ पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 300 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ट्यूबवेल लगा हुआ है, बाकी दूर तक निगाह दौड़ाने पे यहाँ पे सिर्फ सूखे खेत, कुछ सूखे कुछ हरे पेड़ों के बीच भैया राम का ये छोटा सा मिट्टी का घर। पेड़ लगाने का जो काम है आपने कब से शुरू किया?
2007 से।
मैंने वृक्ष की ऐसी लगन आ गई कि थोड़ा माता पिता की और पेड़ न थी, तो इसलिए ऐसा यही समय में यही दिनन में जो नव दुर्गा का दिन होता है कसम खाया था मैंने वृक्ष सेने के लिए। और मेरे पिताजी के साथ पौधा है तो कम से कम मुझे 14 तो सेना चाहिए।
भैया राम को ये पेड़ वन विभाग ने दिए और इन्हें सहेजने की प्रेरणा उन्हें अपने माँ बाप से मिली, शायद इसीलिए पेड़ उनके लिए औलाद के समान है।
शासन के जब लग गए तब ये इतनी चॉइस आ गई कि मैं अब वृक्ष पुत्र की तरह मैं सेता रहूंगा।
भैया राम ने इस पथरीली पहाड़ी जमीन पर 40,000 पेड़ लगा डाले हैं। वन विभाग के अधिकारी इन पेड़ों की संख्या की पुष्टि करते हैं। बांदा चित्रकूट क्षेत्र के वन संरक्षक के एल मीणा भी भैया राम की तारीफ करते नहीं थकते।
वन विभाग तो क्या है, 3 साल अनुरक्षण करके और उसको ऐसी देख रेख करता है, इसके बाद पेड़ स्वतः ही बड़े हो जाएंगे तो उसमें ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन भैया राम का जो योगदान है वो वाकई में अनुकरणीय है। वन विभाग ने जो पेड़ लगाए थे उसमें काफ़ी सहयोग दिया है, उन पेड़ों को सींचा है, सुरक्षा की है। मैं तो कहूँगा कि आसपास के गांव वाले भी उनको और भी आत्मसात करें।
पेड़ आज बड़े हो चुके हैं, सूखे की मार और पानी का संकट भी काफ़ी हद तक झेल ले रहे हैं, लेकिन नन्हे पेड़ों को इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए भैया राम ने जो जतन किया उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
पानी वहाँ गांव से लेकर 2 घड़न में यहाँ वहाँ कमर लेकर के और फिर उनको सींचता था, सींचा अभी सींच रहा हूँ।
दिन भर में कई घड़ा पानी ले आते थे?
दिन भर में 10 घड़ा ये टाइम और 5 घड़ा दूसरी टाइम।
भैया राम अपने पेड़ों को दिखाने जब हमें जंगल में कुछ और अंदर ले गए तो एक और बात उन्होंने बताई।
कल साल हो गए यहाँ अधिकारी ना आमला, तो मैंने कहा कि अब तो गड़बड़ हो जाए।
कितने साल में बनाया हो रोड बाबा?
ये 6 महीने में बनाया।
कितनी बड़ी है?
3 किलोमीटर से उपरांत होगी, कम ना हो।
अकेले ही बनाए हो? रोज कितना टाइम देते थे?
6 बजे से 12 बजे तक सुबह, 10 फुट सुबह पहाड़ और 8 फुट साइड टाइम।
यानी उन्होंने एक यहाँ पे कच्ची सड़क भी तैयार कर दी। भैया राम के इस काम को कोई समझे या न समझे लेकिन वो अपने अभियान में लगातार लगे हुए हैं। वो बताते हैं कि इस इलाके को हरा भरा करने के बाद अब वो इसे आगे तक फैलाना चाहते हैं। जंगल में भैया राम के उस छोटे से घर में हमें देखकर कुछ लड़के भी पहुंच गए।
इनको जानते हो बाबा जी कौन है?
भैया राम यादव।
कौन है, क्या करते हैं?
नर्सरी को सींचते उतते, बाल्टी में घरा में सींचते रहते हैं दिन भर।
तुम बताओ तुम क्या करते हो भैया?
किसानी का काम।
इनको कब से देख रहे हो ऐसे करते हुए?
इनको हम 2007 से देख रहे हैं करते यही काम। बराबर करते चले आ रहे हैं, रात में भी यहीं रहते हैं, दिन में भी यहीं रहते हैं।
अपने इस जुनूनी सफर में भैया राम ने न सिर्फ प्राकृतिक कष्टों को ही सहा बल्कि दूसरी बाधाएं भी उनके सामने थीं। लेकिन आज गांव के लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। रास्ते में हमारी मुलाकात रामजी त्रिपाठी से हुई।
जो जानवर चराते हैं यहाँ उनके लिए खराब कर रहा है और बकायदे गांव भर के लिए अच्छा कर रहा है और हमारे लिए तो सारा आना अच्छा है और उसकी मदद भी हम करवाते हैं।
भैया राम की 8-10 साल की मेहनत का परिणाम ये पेड़ बयां कर रहे हैं, वो भी उस इलाके में जहाँ बुंदेलखंड पैकेज के करीब 200 करोड़ रुपए सिर्फ पेड़ों के नाम पर खर्च कर दिए गए और बकौल स्थानीय लोगों के वो पेड़ कहीं दिखे नहीं। मगर भैया राम कहते हैं कि उनकी एक छोटी सी मांग अगर सुन ली जाए।
नरेगा में पैसों के लिए अवसर दिया गया है तो एक बार वृक्ष के लिए अवसर दे दिया जाए
तो यहाँ हरियाली वापस आ सकती है।
ये थे समीर आत्मज मिश्र और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। कांग्रेस और भाजपा की खींचतान में फंसे उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने फिर राष्ट्रपति शासन बहाल करने को कहा है। अब 27 अप्रैल को सुनवाई के बाद उत्तराखंड में नई सरकार की तस्वीर साफ होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अगर ब्रिटेन जून में होने वाले जनमत संग्रह के दौरान यूरोपियन यूनियन छोड़ने का फैसला करता है तो वो समृद्धि और ताकत दोनों खो देगा। अमरीका ईरान से परमाणु रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाला 32 टन हैवी वाटर खरीद रहा है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने सीरियाई वायुसेना के एक पायलट को पकड़ने का दावा किया है मगर इसका कोई सबूत पेश नहीं किया है। अमरीकी सेना ने माना है कि पिछले सितंबर के बाद 5 महीनों में इराक और सीरिया में उसकी बमबारी में 20 नागरिक मारे गए हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई है, इनमें 5 बच्चे शामिल हैं। अमरीकी राज्य मिनेसोटा में अधिकारियों ने कहा है कि गायक प्रिंस ने खुदकुशी नहीं की है। कार निर्माता कंपनी फिएट क्रिसलर दुनिया भर की सड़कों से अपने 11 लाख वाहन वापस लेगी। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली देवाशीष कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।